ओम शांति। पच्चीस नंबर क्वेश्चन 24 पेज पर 12/3/87 का पैसा जाए। गार्डन चला है, नैन ही को राह दिखाई दे। ये गीत बहुत कामन गाए हुए है। भगवानंदों की लाठी कैसे भी है, भगवानंदों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं। परंतु पाप को नहीं पाते, आत्मा कहती है बाबा मैं आपसे मिलने के लिए शरीर द्वारा बहुत ही भटकी, आपका रास्ता बहुत कठिन, ये तो जरूर मनुष्य समझते हैं। जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते ही आए, ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नैनहीन से सज्जे बनेंगे। भक्ति मार्ग का कायदा है भक्ति करना और धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाए, अब तुमने धक्के खाने बंद कर दिए, बाकी और सब धक्के खाए रहे, तुमको ज्ञान मिल गया, भक्ति का फल मिल गया है, तुम भक्ति नहीं करते। भक्ति किसकी की जाती है? भक्ति किसे कहते हैं, किसकी की जाती है? और ज्ञान किसे कहते हैं, किससे मिलता है? भक्ति कहते हैं अंधश्रद्धा युक्त चलन को। श्रद्धा विश्वास भावना तो अच्छी चीज है, लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास अंधे होकर के चलना, समझ नहीं, बिना समझ पूर्वक चल पड़ना, वो हो गई भक्ति। और आती किससे है भक्ति? किससे आती है भक्ति? आती है रावण। रावण कौन? पांच भूत। नाम क्या दिया उनको? भूत। तो भूत प्रेतों से आती है भक्ति, और ज्ञान किससे आता है? ज्ञान आता है एक बाप से, और भक्ति आती है अनेक भूतों से, अनेक गुरुओं से, जो खुद भी भटकते हैं। भूत भी क्या करते रहते हैं? भूत भी क्या करते हैं? भटकते हैं और दूसरों को भटकाते हैं। और भगवान, भगवान ही भटकता है, है? कहते हैं राम भगवान जंगल जंगल में भगत भटके थे, नहीं भटके थे, क्यों? और कौन भटका था? भगवती राम और कृष्ण तो भगवान होते ही नहीं। हाँ, राम कृष्ण का पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनमें भगवान प्रवेश करता है, तो जब प्रवेश करता है उस समय वो भी नहीं भटकते। आगे भी क्षेत्र जन्म में भटक सकते हैं, लेकिन जब परमात्मा प्रवेश करता है तो वो भी नहीं भटकते। उनमें भी एक है मुकर्रर रथ और दूसरा है टेम्परेरी रथ, लेकिन दोनों नहीं भटकते। हाँ, थोड़ा पार्ट में अंतर तो होगा। एक सूक्ष्म शरीरधारी पार्ट बजाता है और दूसरा साकारी पार्ट बजाता है, आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रथ के रूप में। मुकर्रर मन ऐसे थोड़ी कि आधा समय साकार और आधा समय आकारी रथ रह जाए, नहीं। मुकर्रर मन, हाँ, सदा काल साकार उसको कहेंगे मुकर्रर। आधा कल्प धक्के खाए हैं, अब तुमने धक्के खाने बंद कर दिए। तुमने माने किसने? गुरुओं के, भूत प्रेतों के तुमने आधा कल्प धक्के खाए, अब तुमने धक्के खाने बंद कर दिए। क्यों? तुम भक्ति नहीं करते हो, माने तुम किसी देहधारी की भक्ति या भूत प्रेत आत्मा की भक्ति नहीं करते हो। न शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र किसने लिखे? मनुष्य गुरुओं ने। जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करें? जबकि भगवान सबको अपने साथ ले जाने वाला मिला है, गुरुओं को भी वो अपने साथ ले जाएगा, भूत प्रेत की आत्माओं को भी अपने साथ ले जाएगा, तो फिर हम औरों की भक्ति क्यों करें? तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबके साथ ले जाएगा, सबको मन, चाहे सत्य त्रेता में आने वाली देव आत्माएं हों, चाहे पूरे 84 जन्म लेने वाले बीज रूप आत्माएं हों, ऑलराउंड पार्टीधारी, और चाहे द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक आने वाले दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हों, जिनमें फर्स्ट क्लास पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी होती हैं, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास पार्ट बजाने वाली भी आत्माएं होती हैं, तो सबको साथ ले जाएगा क्या? न देवात्माओं को छोड़ेगा, भारतवासी आत्माओं को छोड़ेगा जो पक्के भारतवासी हैं, या जो कच्चे भारतवासी हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको भी नहीं छोड़ेगा, और जो अपने धर्म के पक्के हैं बल ज्ञान समझेंगे, लेकिन पूरी धारणा उनको ज्ञान की नहीं है, पूरा निश्चय नहीं बैठेगा। जो साकार को उस समय तो मान लेंगे क्योंकि उनके मुकाबले ज्यादा पावरफुल दिखाई देगा उनको इस समय कयामत के समय, बेचारे कुछ कर नहीं सकेंगे, उन्हें सर तो झुका लेंगे लेकिन चलेंगे नहीं, तो उनको भी साथ ले जाएगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अभी देखो सभी धक्के खाते ही रहते और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते, क्या धक्के खाने और खिलाने वाले खुद धक्के खाते रहते हैं और दूसरों को आशीर्वाद करेंगे, समझते कुछ भी नहीं। जो भी साधु संत आदि आते हैं उनके लिए समझते तो हैं कि हमको ये रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते तो दिखाएंगे फिर कैसे। दिखाए तो वो जिसको खुद नैन हो, और जो खुद ही नैन ही न है तो भगवान से कहता है हमको नैन दे दो, राह दिखाओ। आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं भगवान को याद करो, राम राम कहो। ये तो एक बार आपने बताया, ये तो हम घर बैठे भी याद कर लेंगे। हम राम राम करें, भगवान को याद करें, तब आपसे तो हमारा कोई काम नहीं रहा ना। आपको तो सिर्फ रास्ता बताना है, रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है तो कहेंगे इस रास्ते से जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम तुमको साथ ले चलते। ये बात क्या कहते हैं, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। दूसरे तो सब रास्ता बताया और अपना चलते हुए, गुरु लोग क्या करते हैं रास्ता दिखला देते हैं, चेले चलते रहते हैं, गुरु मर जाते हैं, वो रास्ता चलते ही चलते फिर वो भी मर जाते हैं या दूसरा कोई गुरु कर लेते हैं। तो बाप तो तुमको साथ ले जाएंगे, ऐसे नहीं बीच में मर बिल्लाए जाएंगे। तुमको रास्ता चाहिए वो हम बता दें, वो कोई गाइड नहीं बनते हैं, परंतु गाइड कोई तो साथ में चाहिए ना, बगैर गाइड तो मुझे पड़ेंगे। जैसे एक दिन खादी के कारण जंगल में बच्चे मुझ पड़े थे, ये भी माया की खादी बड़ी जबरदस्त है, इस टिम्बर को खादी के कारण रास्ता नहीं दिखाई देता तो बड़ी खबरदारी रखते। तो ये फिर है माया की खादी, कोई को रास्ता का पता ही नहीं पड़ता। जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए, भक्ति करते ही आई, अनेक प्रकार की मतें मिलती हैं, जैसा संग वैसा रंग। मतलब जैसा गुरु होगा वैसा ही उसको संग का रंग लग जाए। गुरु अगर परमात्मा होगा तो सबसे अच्छा सत्य का संग लगेगा, क्योंकि सत्य कौन है, एक परमात्मा, बाकी तो ये झूठों की दुनिया है। 500 करोड़ मनुष्य आत्मा सब तमो प्रधान बनी पड़ी, सब झूठ हैं। जिनको भी हम श्रद्धा पूर्वक नमन करेंगे अपने से ऊंचा समझेंगे तो साहब अपने संग के रंग में दृष्टि और वृत्ति के रंग में रंग कर नीचे गिराएंगे, ऊंची नहीं उठा सकती। देवात्माओं का संग करेंगे, देवात्माएं भी अभी ऊपर नीचे हो रही, जो देवता बनने वाली अष्टरतन अष्टदेव वो सबसे जाती इस समय ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो ब्राह्मणों की दुनिया में दीदी दादी दादाएं बनकर के बैठते हैं, चाहे विग्रूपात्माओं की दुनिया में हो और चाहे आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में हो, जगतवाणी में बोला है 100 की माला फिर भी 90% बन जाती है, लेकिन 8 की माला में ऊपर नीचे अदली बदली बहुत होती है। क्यों? अगर आप सेट हो जाएं, तो उनके फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे अपने आप सेट हो जाएं। तो जो 8 मुख्य रत्न है वो ही हिलते डुलते हैं, उनका ही संग का रंग हमको हिलाई डुलाई देगा, तो और कौन बचेगा? जैसा संग वैसा रंग। फिर भी कोई की ऊंची स्टेज है सदाकाल की, तो वो परखी जा सकती है। जिसके संग के रंग में रहने से हमारी सदाकाल चढ़ती अवस्था हो, सदाकाल उसी का संग करना चाहिए। और जिसके संग के रंग से हमारी अवस्था उड़ती और चढ़ती उठती बैठती आती हो, कभी चढ़ती कला कभी उड़ती कला कभी ठहरती कला, तो उसका संग नहीं करना चाहिए। हर जन्म में गुरु भी करना पड़ता है। अब तुम बच्चों को तो सतगुरु मिला, अब हम बाबा से वर्षा ले रहे। पहले हम अंधेरे धुंधले में थे, अब सतगुरु मिला है तो और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ जो भी पंडित आए थे सब भिन्न भिन्न प्रकार के थे। तिलक भी कोई का कैसा था, तो तिलक भी एक जैसे नहीं होते। तिलक किसकी निशानी? आत्मिक स्थिति की निशानी तिलक। राज्य के टीके की निशानी तिलक। तो पंडितों का कौन सा टीका होता है? आत्मिक स्थिति। कोई की आत्मिक स्थिति कैसी, कोई की आत्मिक स्थिति कैसी, तो जैसी जैसी आत्मिक स्थिति वैसे वैसे उनके तिलक दिखाई गए। या तो इनमें कोई फॉलोअर्स होंगे, एक तिलक देने वाले और दूसरे न देने वाले। समझो अगर इनमें से कोई आकर के ज्ञान लेते हैं और दूसरे कोई को कहते हैं मन मना भ्रम, शिव बाबा को याद करो, तो झट पूछेंगे ये ज्ञान कहाँ से लिया। वो झट समझेंगे इसने दूसरा रास्ता ले लिया। उनका दुकान खत्म हो जाएगा। जगह मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम क्यों ना ब्रह्मा कुमारियों के पास जाए। सतगुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ सिखाएंगे। सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भक्ति में रख सब कुछ कराना पड़ेगा। बोलते हैं कि बच्ची भी करें और हमारा मान मर्तबा भी बना रहे, क्या सात दिन की बच्ची भी करें क्योंकि वायुमंडल में आकर के पके भी आकर के और पकने के लिए आए और फिर हम आर्डर चलाएं इधर आओ रात के 12 बजे आओ, वाह भाई तो ये सब चलेगा क्या है? ये सब यहाँ नहीं चल सकता, सब कुछ करना पड़ेगा। कहा बच्चे बाबा तो ठुक ठुक के देखेंगे ना, तो बेअभिमान तो नहीं है, बेअभिमान होगा तो रिजल्ट क्या आएगी? अंदर से संकल्प बनता और संकल्प जब चल पड़ेंगे संघर्ष शुरू होगा डायरेक्शन देने वाले की प्रति और डायरेक्शन लेने वाले से, तो दोनों में टकराव होगा और जब टकराव होगा तो जरूर जो पावरफुल होगा वो कमजोर को भगा देगा। तो बच्ची स्मूथली पूरी हुई या खंडित हो गई, क्या कहेंगे? बच्ची तो खंडित हो गई, तो क्या साबित हुआ कि आत्मा हमारे धर्म की थी या दूसरे धर्म की थी? दूसरे धर्म की आत्मा थी, इंटरफियर करने आई थी कि चलो डिस्टर्ब कर दें, लेकिन बेचारी नहीं कर। तो यहाँ तो सात रोज भट्टी में रखकर सब कुछ कराना पड़ेगा, रोटी पकाओ क्या करो और रोटी पकाओ, चलो बच्ची यह करो माने कुछ भी करो, लकड़ी फाड़ो। जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं ना, तो देह बांध टूट जाए, ऐसे नहीं बच्ची यह करने के लिए आए हैं तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान सुनाया जाएगा, यह सिर्फ याद में बैठाया जाएगा और दूसरा कोई धंधा नहीं करना। तो देह अभिमान टूट जावे तो फिर ऐसे को ठहरना बड़ा मुश्किल है, ऐसे को जिसको देह बांधा है। कौन सा देह बांधा? बाबा है, बाप है, तो बच्चे को तकलीफ है तो 12 बजे आएगा नहीं, आएगा नहीं तो बाप कहेगा मैं जाता हूँ, इसको क्या कहेंगे? घर का बच्चा कभी ऐसे कहेगा? घर का बच्चा बाप कैसे कहेगा? नहीं कह सकते। बच्चा होगा तो बच्चा तो कैसा भी खराब से खराब बच्चा होगा तो भी रात के 12 बजे उठ करके भागेगा थोड़े ही, वो तो पूरी पालना देगा। दूसरा जो बाहर से आते हैं उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है, क्या पहले पहले क्या करना है? बिना बाप का परिचय दिए कभी उनको आवाहन नहीं करना, बुलाना नहीं, कहाँ? बाप के पास। ये पहला डायरेक्शन कहाँ से आते हैं? बाहर से, माने आपके संगठन के अंदर की बात नहीं लेकिन बाहर से जो आते हैं। उनको परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक बनने का वरदान ले रहे हैं। दूसरा बाबा है, विश्व का रचयिता है, बाबा विश्व का रचयिता है, ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट, क्या जिस नए विश्व का बाप रचयिता है वो है हमारी एम ऑब्जेक्ट, वहाँ तक हमको पहुँचना है। ये हम आप कहते हैं कि हमको नर से नारायण बनना है, तुमको भी दाखिल होना है तो आठ रोज आकर के पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत, इतना अभिमान कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ भी नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते, समझो कोई बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बहुतों को समझाते थे, अब बाबा का हाथ उन्होंने छोड़ दिया, इस तरफ इशारा किया। अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मतन द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते हैं चेतन द्वारा पढ़ाते हैं, ब्रह्मातन द्वारा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूं, कहता कौन है? बाबा कहते हैं मैं नहीं स्वर्ग की स्थापना करता हूं, मैं स्वर्ग की स्थापना नहीं करता हूं, किसके द्वारा कराता हूं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूं। राजयोग सिखाता हूं, मैं क्या करता हूं? राजयोग सिखाता हूं। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव बाबा का भी हाथ छोड़ा, विचार किया जाता है फलाने ने क्यों छोड़ा। तुम एक दो को लिख सकते हो, बहन जी आप तो क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा? चलो बहनों से तुम्हारी कोई गड़बड़ नहीं हुई तो क्या बाप ने कुछ तुमको कहा? क्यों पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गई? ये बात बाबा भी पूछ सकते हैं, किससे? जो आत्मा एक बार ब्राह्मण बन चुकी हो और बाबा का हाथ छोड़ दी, तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा? तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथंती भागंती में आ गई क्या? अपनी तकदीर को लकीर लगा दी, समय देख करके उनको लिखना चाहिए, हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जाग जा दे, क्योंकि गिरे हुए को बढ़ाना होता है, डूबने से किसको बचाया जाता है? तो फिर आफरीन देते, ये भी डूबने से बचाना है, जान की ही बातें हैं। लिखना चाहिए तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है और अब फिर छोड़ेंगे तो फिर डूब मरे। तारू लोग तैरने वाले अपनी जान को जोखिम में रखकर दूसरों को बचाते हैं, क्या करते हैं? तारक भाई का तो नाम ही है, क्या करते हैं, अपनी जान भी जोखिम में डाल करके दूसरों को बचाते हैं। डरती नहीं है कि हम कहीं डूब न जाए। कोई पूरा तैरने वाला नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है। कौन? तारू। तुम भी कोई को डूबता देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को ही समझाया, फिर तुम कैसे डूबती हो? तुम प्रेम से लिखो बहन जी। तुम तो राजयोग सीट पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो, तरक पड़ता है। दूसरी बात यह है, जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाए, ये राजयोग बहुत अच्छा है। बस लिखा, बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने ये ओपिनियन लिख करके दिया। ओपिनियन तो लिख के दिया, परंतु किया क्या? ना अपना फायदा किया और ना दूसरों का किया। पहले मुख्य बात है माता पिता की पहचान दे, इसको जो ओपिनियन लिखे हैं उनको माता पिता की पहचान पहले देनी है। ये बाबा ने प्रश्नावली बनाई तो पूछो क्या प्रश्न, सबसे पहले पूछो हैं? परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तथागत से ब्रह्मा कुमार तुम्हारी क्या जवाब देंगे? वो ब्राह्मण क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे हमारी आत्मा का पिता है, आत्माओं का बाप है, लेकिन तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे हमारी आत्मा का बाप है। तो उनसे पूछो आत्मा के बाप से क्या वर्षा मिलता है? आत्मा निराकार, आत्मा का बाप भी निराकार, तो निराकार से वर्षा कैसा मिलेगा? निराकारी ज्ञान का सिर्फ वर्षा मिलेगा या स्वर्ग का साकार वर्षा भी मिल जाएगा? इसलिए एक मुरली ने प्रश्न किया है, निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? नहीं देगा, कैसे देगा? रचयिता है ना स्वर्ग का, क्रिएटर है। आत्मा और परमात्मा क्रिएट नहीं की जाती है, रची नहीं जाती है, वो तो सदाकाल है ही है। आप बिंदु को क्रिएटर नहीं कहेंगे, क्रिएशन नहीं कहेंगे। तो क्रिएशन और क्रिएटर का संबंध तो साकार में होता है। तो निराकार बाप जब साकार में प्रवेश करे तो वो मनुष्य शक्ति का बाप कहा जाता है। मनुष्य शक्ति का बाप मनुष्य शक्ति के जो बच्चे हैं उनके लिए जिम्मेवार है। तो पहले किसको उठाएगा? सुप्रीम सोल बाप पहले किसको उठाएगा? जो मनुष्य शक्ति का बाप है, बीज है, पहले उसको उठाएगा। और उस साकार के थ्रू ही साकार विश्व की बात का वर्षा बच्चों को देगा। तो पूछना है कि परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर कहें निराकार बाप है, निराकारी वर्षा है, तो उनको समझाना पड़ेगा। निराकार से निराकारी वर्षा मिलता है, साकारी बाप से साकारी वर्षा मिलेगा। वो साकारी बाप कहाँ है? पहले से ही छोड़ गया, सूक्ष्म वतनवासी है, तो वर्षा भी कैसा हो जाएगी? तो वर्षा भी जाके सूक्ष्म वतन में ले लो। साकारी बाप होगा तो साकारी वर्षा भी देगा, लेकिन बाप तो कह गए हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा, विश्व की बादशाही का वर्षा लेकर जाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बुद्धियोग से मेरे साथ जाएंगे, शरीर से यहाँ रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शरीर भी उनका खलास होगा और आत्मा भी बाप के साथ जाएगी, बाकी जाएंगे सब साथ। तो वर्षा कैसा मिलेगा? साकारी संबंध बाप का हो और साकारी वर्षा, तो ये लिखना चाहिए। तो लिखना चाहिए से हमने ये प्रश्न पूछा और उसने जवाब दिया और वो इस बात को मान ले कि हमें साकारी बाप से साकारी वर्षा चाहिए विश्व की बात सही कर, तो फिर उसे लिखाई लेना चाहिए। क्या वो कहते हैं उसे पत्र लिखने की क्या बात, लिखने की क्या बात? जो बात कह दी वो ठीक है, अरे अभी तुमने कह दी कल तुम उसको ना कर दो, इसलिए लिखो, लिखा लेना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझा कर पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय दिया, अब समझा है तो लिखो। निश्चय पत्र भी किस बात पर लिखाई लिया जाए, क्या बात लिखाई जाए? मात पिता का परिचय मुख्य प्रदर्शनी में देना, यही मुख्य बात है। अगर बुद्धि में बैठ गया है तो उनसे उसी समय लिखाई लेना चाहिए। समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया तुमने कुछ भी नहीं समझा। उनके मुंह का ही बता दो, हम जो कुछ तुमको बताना चाहते हैं वो तुमने कुछ भी समझा नहीं है। हट्टी समझा करके फिर उनसे लिखाना चाहिए। बरोबर ये जगत अम्बा जगत पिता है, कौन की तरफ इशारा किया? ब्रह्मा। बरोबर ही है जगत पिता जगदम्बा हैं, तो एक हुआ या दो हुए? अगर ब्रह्मा ही की तरफ इशारा किया हो तो एक हुआ या दो हुए? तो एक ही हो गया, यहाँ तो है लिखा हुआ है। और फिर जगदम्बा जगत पिता, इसका मतलब है कि पिता का रूप भी है पुरुष रूप, और जगत माता का भी रूप है। इसलिए एक मुरली में कहा है जगदम्बा को वर्षा कहाँ से मिला? जगदम्बा से मिलता है, जगदम्बा को वर्षा मिलता है बाप के, और जगदम्बा से सारे विश्व को वर्षा मिलता है। तो ब्रह्मा द्वारा कहा जाता है, ब्रह्म ने बड़ी माँ मन मा मन बड़ी माँ ब्रह्मा जगदम्बा। वो लिख दे बरोबर बाप से वर्षा मिल जाए, क्या कहा? ये लिख कर दे अब समझे तो तुमने कुछ सर्विस की है, नहीं तो तुमने कोई सर्विस नहीं की कि हमने इसकी इतनी सर्विस की उतनी सर्विस की, लेकिन उन्होंने लिख कर जो कुछ नहीं दिया, तो जैसे कि तुमने सर्विस कुछ नहीं। फिर अगर नहीं आते हैं तो फिर उनको चिट्ठी लिखनी कि बरोबर ये जगदम्बा और जगत पिता हैं,
تو پھر برسا لینے کیوں نہیں آئے ہو؟
تم نے کہہ تو دیا تھا لکھا نہیں،
چلو کوئی بات نہیں،
اب اگر تمہارا کہا ہوا سچا تھا تو تم کو آنا چاہیے نا،
کیوں نہیں آتے ہو؟
اچانک اگر تم کو کال کھا جائے گا کیا کریں گے؟ ان کے پیچھے محنت کرنی چاہیے، پردرشنی کے مشکل کوئی دو چار آتے کیا؟ پردرشنی کے بعد کتنے آتے ہیں؟ دو چار آتے تو ڈھیر ہیں پردرشنی سمجھنے کے لیے، تو دو چار آئے تو فائدہ کیا ہوا؟ بچوں کو خوشحال کرنا چاہیے، آنا چھوڑ دیں تو چٹھی لکھنی چاہیے، تم بےحد کے باپ سے ورثہ لیتے تھے پھر مایا نے تم کو پکڑ لیا ہے، پربھو کا طرف چھوڑ دیتے ہو، پھر بھی تم اپنا پد گرست کر دیں، جو مہاویر ہوگا وہ جت سنجیونی بوٹی دے گا، یہ بے ہوش ہو گیا، مایا نے ناک سے اس کو پکڑ لیا ہے تو اس کو بچا لے، کتنی محنت کریں تب کوٹوں میں کوئی نکلے، جانچ کرنی پڑے، جانچ کرنی پڑے کہ یہ سیمپلنگ کیسا ہے جو باپ کو چھوڑ کے گیا، پر دوسرے دوسرے دھرموں میں کنورٹ ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ دیوتاؤں کی آتما ہی ہوتی ہے جو دوسرے دھرم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں سب؟ بھارت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھارت واسیوں کو دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں دوسرے گروپ میں، دوسرے دیش میں، دوسرے دھرم، تو شوٹنگ کہاں ہوتی ہے؟ یہیں شوٹنگ ہے، تو ان کو پرکھنا پڑے یہ کون سے گروپ کا ہے، کیسا سیمپلنگ، بچیاں لکھتی ہیں کہ ہمارا گلا گھٹ گیا، پرنتو تم جاتی باتوں میں جاؤ نہیں، اس لیے محنت کرنے کی کیا درکار، تم کیا سمجھو؟ پہلی مکھی بات سمجھا کر کے ان سے لکھائے لو، تم جاتی باتوں میں نہیں جاؤ، ہے نا؟ یہ نہیں چترمورتی بھی سمجھایا، پھر لکشمی نارائن کا چتر بھی سمجھایا، پھر شکتی چتر بھی سمجھایا، جاڑ بھی سمجھایا، سیڑھی بھی سمجھایا، سارا سمجھایا گیا، تمہارے لگاؤ کیا رہا، تو کچھ فائدہ ہونے والے نہیں، کیا کرو؟ ٹو دی پوائنٹ، صرف باپ کا پریچے دو، ماتا کا پریچے دو، ماں باپ کا بات سمجھاؤ، اگر اس کی سمجھ میں بیٹھتا ہے تو ٹھیک، کچھ لکھا لو، اگر وہ بات اس کی بدھی میں بیٹھتی ہے تو پھر اور باتیں بھی سمجھاؤ، جان کے اور بھی ڈیٹیلز اس کو بتاؤ، ایک ہی ترمورتی پر پورا سمجھانا ہے، ایسے نہیں اس نے ترمورتی پوری سمجھی یا نہ سمجھی، چلو آگے، اس کی بدھی میں تو کم سے کم سکا تو جما دیں، ہم جان کی آتما ہے، ہم بھی بڑے پنڈت ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو تمہارا بھگت تو بن جائے گا، لیکن سیواوا کا بچہ نہیں بنے گا، تو دیکھنا ہے پورا سمجھتا ہے، پورا سمجھانا ہے، نشچے کرتے ہو یہ تمہارا ماں باپ ہے، ان سے ورثہ ملنا ہے، کوئی کتنا بھی بوڑھا ہو یہ دو اکثر تو کس کو بھی سمجھائے سکتے ہو، اگر یہ دو اکثر بھی دھارن نہیں ہوتے ہیں تو بابا سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی بدھی کہاں کچڑے میں پھنسی ہوئی، کیا بات، دو اکثر کون تھے؟ مما بابا، ماتا پتا کی اگر پہچان نہیں ہوئی تو ضروری سے ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا
कि ये प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवता सनातन धर्म के नहीं है। माने किसी की तरह धर्म में से उठ करके ये आई हुई आत्मा है, ये नहीं समझ। जरूर कहां कितरे में फंसी हुई, मुख से ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद। वर्षा है विष्णुपुरी का, जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज करके समझाते हैं, अहल्याएं कुब जाएं कैसे भी हो, वो भी वर्षा पाए सकते। क्या ऐसे नहीं तो बस बड़े बड़े आदमियों के पीछे पड़ जाओ है? और कोई पाप करने वाली वैश्या सामने आ जाए कि हमको भी ज्ञान सुना दे, तो मैं मालूम है ये कुलक्षणी है, तो तुम उसे कन्नी काट करके भाग जाओ। क्या करो है, अहिल्या को भी सुनाओ। नाम क्या रखा उसका, आही ले आ, उसको ले आई, सर्प को जरूर लाएगी अपने साथ। वैश्या है तो वैश्या का संग किसके साथ होता है, है? लंपटों के साथ। अगर वो आएगी तो उसके पीछे पीछे लंपटों का उजूंगी जरूर आएगी, तो तुम डर जाओ। वो भी डर का पाए सकती है। अहिल्या ने क्या किया था, विकारी को इंद्र सभा में ले आई तो उसको श्राप मिल गया। तुमको इसमें डरने की क्या बात, तो ज्ञान को समझाया जाएगा ना। जब बाप को समझ जाएगी तो फिर जैसा वो करेगी वैसा वो पाएगी, तुमको क्या घबराने की बात। तो अहल्याएं हो अथवा कुबजाएं, कुबजाएं मन इनकी बैकबोन टूट गई है। बैकबोन कौन है, ब्राह्मणों की दुनिया में बच्चों का बैकबोन तो बाप है, ब्राह्मणों की दुनिया में अहिल्याएं भी हैं जो जानती हैं ये कामी क्रोधी सर्प है पक्का, फिर भी अपने लगाव के कारण उस सर्प को बाप की सभा में ले आती। अपने लगाव के कारण बाप की सभा में ले आती है तो उनको स्वतः ही वो साप मिल जाता है। क्या पत्थर बुद्धि बन जाएगी, कैसी हो जाएगी बस, बुद्धि फिर परमात्मा की याद में नहीं लगेगी, कहाँ लगेगी। जिसको पकड़ के ले आई है बस उसी की पालना में सारी बुद्धि चली जाएगी, तो फायदा क्या हुआ, बाप का वर्ष मिलेगा। लेकिन तुम मत डरो कि अहिल्या है, हम इसको कैसे बाप का परिचय दें, चाहे अहिल्या हो चाहे कुब्जा हो। कुब्जा माने जिसका बैकबोन बाप दादा टूट गया हो, पहले जुड़ा हुआ होगा तभी तो टूटेगा, यानी पहले बाप दादा उसको सहयोग देता था बैकबोन बनकर के, आगे वो रहती थी समझाने के लिए, समझ आत्मा को खींचने के लिए, और शक्ति किसकी लगती थी, बाप की शक्ति लगती। लेकिन कुछ ऐसा कर्म हुआ जिसके कारण बाप ने उसका आधार छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करता हूँ, तो बाप ने उसके अंदर वो सर्विस करना बंद कर, तो क्या हो गई कुब्जा। तो कैसी भी कुब्जा हो तुम ये मत सोचो कि ये कुब्जा है अहिल्या है, नहीं, ये भी बाप से वर्षा पाए सकते, सिर्फ श्रीमत पर चले। देही अभिमानी बनना तो सहज है, जिसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है, तो बहुत सर्विस कर
क्या था?
बहुत सर्विस कौन कर सकते हैं? जिनको घर गृहस्थ पालने की कोई झंझट नहीं है वो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की रहती है, टूटती ही नहीं। कोई कोई को कौन सी लिखते हैं? कोई कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की जगह टूटती ही नहीं है। देही अभिमानी जो होंगे कब शरीर में मोह नहीं रखेंगे? किसके शरीर में? जिसको घरगत नहीं है उनको किसके शरीर में मोह होगा? क्यों? अकेला आदमी, उसको क्या पाव रोटी आटा चाहिए और क्या चाहिए? मोह की क्या बात? पाव रोटी आटा जो बाप तो बाप ने गारंटी दे दी जो मेरी सर्विस में रहेंगे वो भूख नहीं मर सकती। तो किसका आधार लेना चाहिए? बाप का आधार लेना चाहिए या दुनिया वालों का आधार लेना चाहिए? आगे पीछे तो देख ले क्या हो रही। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपन को आत्मा समझो, क्या देह समझोगे तो पेट भी याद आ जाएगा, पेट कहाँ से भरेंगे? ये पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। इनसे पुरानी दुनिया एक बाप को याद कर, वर्ष को याद करने से रचयिता भी याद आ जाते हैं। तो कितनी कमाई है, खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बनाए देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करो। फिर माँ बाप से छूटे किससे? माँ बाप किससे छूटे? जो बच्चा लायक बन गया वो तो अपने पैरों खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो अपने पैरों खड़ा हो सकता है, तो माँ बाप तो उसकी पालना के जिम्मेवारी से छूटे। यहाँ बहुत हैं जिनकी रग जाए, काय की रग, मोह की रग, संबंधों की रग। कोई को अपना बच्चा नहीं है तो धर्म के बच्चे के मोह, धर्म का बच्चा बनाने के मोह लग जाता है। ये क्या बात है? अपना बच्चा नहीं है तो और ही स्वतंत्र कि चलो एक से दो हो गए, डबल होकर के सर्विस करेंगे और सेवा अच्छी होगी। लेकिन फिर मोह लग जाता है, हमको बच्चा नहीं है तो धर्म का बच्चा बना लेंगे, गोद ले लेंगे। तो ऐसे सिर्फ पद नहीं पाए, तो धर्म का बच्चा बनाएंगे। हर देव बाबा आया हुआ, देव बाबा को बना लो। देव बाबा को नहीं बनाया तो बाबा नाराज हो जाते, ऐसे फिर पद नहीं पाए। सर्विस के बदले उन्होंने डिससर्विस कर ली। प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है कि जो निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है, क्या कहा तो प्रदर्शनी नहीं करते कारण भाई है? बंद है वो, प्रदर्शनी नहीं करते। फिर कौन सी करते? चैतन्य प्रदर्शनी करते। चैतन्य से तो तैयार हो गए हो रहे, फिर प्रदर्शनी कौन सी करते? हमारी है ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी, हमारी कोई जड़ प्रदर्शनी नहीं है। तो प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है, जो उनको निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है, इससे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। कितने जन्म का? 21 जन्म का वर्षा मिलता है। ये बताओ इस बाप से हमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो आप जो समझाएंगे वो तो बुद्धि में बैठेगा। अगर तथाकथित ब्राह्मण इस बाप को समझाएंगे कि ये तुम्हारा बाप है, इससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो वो साबित होगा क्यों है? ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे ना, वो ब्राह्मण ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे, और ब्रह्मा ने पहले ही शरीर छोड़ दिया तो उसको 21वां जन्म मिलेगा साकार? वो तो मिलेगा ही नहीं, तो कितने जन्म का वर्षा हुआ? 20 जन्म का तो खैर नहीं हुआ, होगा तो 21 जन्म का ही, क्योंकि 8 जन्म त्रेता के, 2 सतयुग के, और त्रेता में उनका 1 जन्म बढ़ेगा। लेकिन ये संगम युग का वर्षा जो बाप से मिलता है वो तो उनका साबित नहीं होगा। वीर्य तुल्य जन्म जो परमात्मा बाप से मिलता है वो ब्रह्मा के द्वारा साबित नहीं होता। तो राजयोग द्वारा तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, ये है अहम आपके। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो भक्ति कुमारी होनी चाहिए। वहां विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी, क्यों है? दैवी संतान को इसलिए खुशी नहीं होगी कि वो देवताओं की संतान होंगे, परमात्मा की संतान तो नहीं होंगे। यहाँ हमको ज्ञान है, वहां उनको ज्ञान ही नहीं होगा, तो उनको इतनी खुशी नहीं होगी देवताओं को जितनी तुम अब तुम ईश्वरीय संतान हो। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। क्या कहा? तुम ही का मतलब क्या? तुम किसको कहा जाता है? यह किसको कहा जाता है? तुम किसको कहा जाता है? वह किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है नजदीक वाले को, वह कहा जाता है दूर वाले को, और तुम सामने वाले को। तो तुम ईश्वरीय संतान बनोगे, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। इसका मतलब इसी जन्म में बनेंगे, अगले जन्म आप ताजी अच्छे बकरी मर के। तुम ही ईश्वरीय संतान बनेंगे, तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे। ये कहां कहा कि अगले जन्म में बनेंगे? तुम किसके कहा, किसको कहा गया? जब तुम कहा गया तो अगले शरीर को कहा जाएगा, उससे फिर तुम कहा जाएगा नहीं? तुम ही ईश्वरीय संतान बने हो और तुम ही विष्णु की संतान बनेगी, तो कहा अगले जन्म, तो अगले जन्म में तुम होंगे। तुम बनेंगे इसका मतलब हम ही होंगे जो विष्णु की संतान बने। उस समय बाबा परमधाम वापस चला जाएगा, हम फिर भी जाति करेंगे, परंतु खुशी अभी है, उस समय हमको खुशी उतनी नहीं रहेगी। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहना, ज्यादा देवताएं नीचे हैं, ईश्वरीय संतान ऊंची है। कितनी जनरेशन का फर्क है, हैं? कितनी पीढ़ी का फर्क है? एक पीढ़ी का फर्क है। वो है जन्म देने वाले कौन? ईश्वरीय संतान। ईश्वरीय संतान ईश्वरीय वो है जन्म देने वाले, देने वाले हैं ईश्वरीय संतान, और जन्म लेने वाले देवताओं की संतान। ईश्वरीय संतान से देवताओं को ऊंचा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्या कहा? जो अभी शरीर छोड़ रहे हैं ब्रह्मा की तरह, दादा लेखराज, ओमराधे, मनमोहनी दीदी, बाबू विश्व किशोर की तरह, वो कौन सी संतान बनेंगे? वो दैवी संतान तो बनेंगे, लेकिन अब वो ईश्वरीय संतान नहीं बने। और तुम ईश्वरीय संतान बनेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए बता। उन्होंने 50-55 वर्ष ऐसे ही पढ़ाई करी, मिला उनको कुछ भी नहीं। और हम 2-5-8-10 वर्ष से आए और फटाक से हमको ईश्वरीय संतान बनेंगे, खोख कुमारी कर जानी चाहिए। तो लिखाई देना है माँ पिता का बरोबर, जैसे तुम वर्षा ले रहे हो हम भी वर्षा लेना चाहते। जब तक वो ये बात न लिखें तब तक विश्वास नहीं करो कि इनकी बुद्धि में कुछ बैठा है, कि बाप आया हुआ है विश्व की बात सही कबर का देने। उनकी एड्रेस आदि सब कुछ लिखा लो निश्चय पत्र में। क्या ये भी बताना चाहिए, यहाँ से अगर तुम बाहर निकले बच्ची में, क्या तुम्हें तो आए हो, और यहाँ से अगर तुम बाहर निकले, यहाँ के जो वायुमंडल है उससे बाहर निकले, बच्ची माने बच्ची में से कोई बर्तन चढ़ाया जाए और फिर उसका आगे रख दिया जाए तो ठंडा हो जाएगा कि गर्म रहेगा? ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम बाहर निकले तो माया तुमको बिल्कुल झुला देगी, क्या? इसलिए बाबा ताला बंद करवाए देते हैं, कहीं कोई भूत प्रवेश करके जबरदस्ती न उड़ा ले जाए। तो ये भी बताना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलने से माया बिल्कुल भुला देगी। तो समझो तकदीर में राज